अरुणिमा उस वक्त आस्तिक के फार्म हाउस के सामने खड़ी थी जो उसने हिल स्टेशन पर लिया था। अरुणिमा की हालत यहां तक पहुंचते पहुंचते खराब हो चुकी थी, पर अब वो फार्म हाउस के सामने थी क्योंकि उसे आस्तिक की गाड़ी पार्किंग में नजर आ रही थी। इसका मतलब उसका अंदाजा सही था, आस्तिक अपने फार्म हाउस में ही आया था। लेकिन अब अरुणिमा अंदर कैसे जाए? गेट पर ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड था और ना ही उसे कोई नजर आ रहा था। उसने लोहे के गेट पर हाथ रखकर उसे खोलने की कोशिश की ही थी कि गेट अपने आप खुल गया, यानी वो लॉक नहीं था। लोहे का गेट खोलकर अरुणिमा आस्तिक की गाड़ी के पास गई। उसने देखा कि आस्तिक की गाड़ी भी बिना लॉक किए खुली पड़ी है और साथ ही उसे गाड़ी में वाइन की बोतलें भी नजर आ रही थीं। अरुणिमा हैरान हो गई, इतनी सारी वाइन की बोतलें, क्या आस्तिक ने इतनी शराब पी है? उसे फिक्र होने लगी क्योंकि गाड़ी के हैंडल पर खून लगा हुआ था। ये देखकर अरुणिमा को एक अजीब सा डर सताने लगा। वो जल्दी से फार्म हाउस के अंदर जाने के लिए तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वो हैरान रह गई, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, शायद वो अंदर से लॉक था। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे डोरबेल दिखाई दी। दो तीन बार बेल बजाते हुए उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और आवाज देते हुए आस्तिक को बुलाने लगी। आस्तिक, आस्तिक, दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ, आस्तिक तुम हो ना अंदर, दरवाजा खोलो। बहुत देर तक आवाज देने के बाद भी अंदर से ना तो कोई आवाज आई और ना ही आस्तिक ने दरवाजा खोला। अब अरुणिमा को घबराहट होने लगी। आस्तिक अंदर है ये बात तो पक्की है, उसकी गाड़ी यहीं है और दरवाजा भी अंदर से बंद है, लेकिन अब वो अंदर कैसे जाए? अरुणिमा दरवाजे से हटी और घर को गौर से देखने लगी। छोटा सा दो मंजिला फार्म हाउस, लेकिन बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया। वो इधर उधर देखते हुए कोई और रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक बड़ी सी खिड़की नजर आई। अरुणिमा खिड़की के पास गई और उसे गौर से देखने लगी। उसने खिड़की के हैंडल को पकड़कर जोर से हिलाया तो वो खिड़की अगले ही पल खुल गई। अरुणिमा हैरान थी कि खिड़की अंदर से खुली हुई है। वैसे तो ये फार्म हाउस शहर से काफी दूर है, इसीलिए यहाँ चोरी होना थोड़ा मुश्किल है। ऊपर से ये आस्तिक का फार्म हाउस है, लेकिन चोरों के कोई उसूल थोड़ी ना होते हैं। अगर कोई खिड़की से अंदर चला गया हो और अगर कल रात आस्तिक के फार्म हाउस में किसी ने घुसपैठ की हो तो? यही सोचकर अरुणिमा का दिल कांप गया। उसने जल्दी से आसपास नजर दौड़ाई तो गार्डन के पास कुछ ईंटें दिखीं। उसने दो ईंटें रखकर उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश की ताकि खिड़की से अंदर जा सके, लेकिन इस सब के बीच उसने अपने पेट को संभाल कर रखा था। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, अरुणिमा ये नहीं भूल सकती थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने खिड़की से सीधे छलांग नहीं लगाई बल्कि ईंटों के सहारे चढ़कर धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। एक बार अंदर पहुंचने के बाद अरुणिमा ने देखा कि ये फार्म हाउस जितना खूबसूरत बाहर से है उतना ही खूबसूरत अंदर से भी है। ये फार्म हाउस अभी नया ही लिया गया है, इसीलिए यहाँ का फर्नीचर से लेकर इंटीरियर तक सब कुछ नया है। लेकिन अब अरुणिमा को आस्तिक को तलाशना था। वो फार्म हाउस में इधर उधर नजर डालती है, लेकिन उसे आस्तिक कहीं नजर नहीं आता। पर तभी उसे विंडो के पास आस्तिक का एक जूता नजर आता है। इसका मतलब आस्तिक यहीं कहीं है, पर कहाँ? उसे नीचे एक कमरा नजर आया। वो जाकर उस कमरे में देखती है, लेकिन वहां आस्तिक नहीं था। यहाँ तक कि उसे कमरे में ना कोई बेड था और ना ही कोई सोफा। फिर अरुणिमा को याद आया कि आस्तिक का जूता सीढ़ियों के पास था। हो सकता है वो ऊपर के किसी कमरे में हो। अरुणिमा आस्तिक का वो जूता लेती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। ऊपर जाकर वो देखती है कि ऊपर दो ही कमरे हैं, लेकिन उनमें से एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। अरुणिमा उस कमरे के पास जाती है और बाहर से अंदर झांकने लगती है, लेकिन जो उसने अंदर देखा वो देखकर वो एकदम हैरान रह जाती है। आस्तिक का जूता वहीं फेंककर वो दौड़ते हुए अंदर जाती है। आस्तिक अंदर बेड पर आधा लेटा हुआ था। उसका आधा शरीर बेड पर और आधा नीचे झूल रहा था, जो कि अगले ही करवट में नीचे गिर सकता था। इसके अलावा उसके हाथ से खून निकल रहा था और उसका पूरा चेहरा उस वक्त पीला पड़ा हुआ था। अरुणिमा जल्दी से आस्तिक के पास जाती है और इससे पहले कि वो बेड से नीचे गिरता उसने फौरन जाकर उसे संभाल लिया। वो आस्तिक को थामकर बेड पर सीधा लेटा देती है। हालांकि आस्तिक का वजन थोड़ा भारी था, लेकिन अरुणिमा के लिए ये मुश्किल नहीं था। जैसे ही उसने आस्तिक को सीधा करके उसका सिर तकिए पर रखने के लिए उसका चेहरा छुआ, तभी अरुणिमा घबराकर पीछे हट गई। आस्तिक की आंखें बंद थीं, उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका बदन किसी तपती भट्टी की तरह जल रहा था। आस्तिक उस समय बेहोश था और बुखार से बुरी तरह तप रहा था। अरुणिमा जल्दी से उसके सिर के पास बैठ जाती है। वो आस्तिक का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे सहलाते हुए उठाने की कोशिश करती है और सवाल करती है, आस्तिक क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन आस्तिक बेहोशी की हालत में कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही उसे इस बात का एहसास था कि अरुणिमा उसके पास है। आस्तिक को ऐसे देख अरुणिमा डर गई थी। वो ना तो अपनी आंखें खोल रहा था और ना ही किसी सवाल का जवाब दे रहा था। उसका पूरा बदन इतना गर्म था कि अरुणिमा के हाथों में भी जलन होने लगी थी। अरुणिमा फिक्र में खड़ी होती है और इधर उधर टहलते हुए ये सोचने लगती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। आस्तिक के एक पैर में जूता था और दूसरे पैर का जूता खुला हुआ पड़ा था। अरुणिमा ने सबसे पहले उसके पैरों से जूते और फिर मोजे उतारकर साइड में रखे। उसके बाद वो आस्तिक के पास जाती है और उसकी टाई को ढीला करके उसके गले से निकाल देती है। उसने देखा कि कमरे का एसी फुल स्पीड पर चल रहा था। सबसे पहले उसने एसी को बंद किया, फिर आस्तिक की शॉर्ट के बटन खोलकर बाथरूम से गीला तौलिया और पानी लेकर आई। उसने आस्तिक के सीने को गीले तौलिए से पोंछा ताकि उसे थोड़ा आराम महसूस हो सके। उसने एक छोटे तौलिए को गीला करके उसके माथे पर रखा और दूसरे तौलिए से उसके सीने और हाथ पैरों को पोंछा। आस्तिक की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी थीं और होंठ हिल रहे थे, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आया था। अरुणिमा बहुत डर गई थी। आस्तिक की हालत ऐसी थी कि उसे तुरंत दवा देना जरूरी था, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती थी। उसे याद आया कि जब उसकी गाड़ी हिल स्टेशन की ओर चढ़ रही थी, तब सड़क के आखिरी मोड़ पर उसने एक मेडिकल स्टोर देखा था। हो सकता है वहां से उसे आस्तिक के लिए दवा मिल जाए, लेकिन आस्तिक को इस हालत में अकेला कैसे छोड़े। पर दवा लाना भी जरूरी था। उसने तौलिए को और थोड़ा गीला किया और एक तौलिया आस्तिक के सीने पर रखा, दूसरा उसके माथे पर। अरुणिमा कमरे से निकलकर सीधे हॉल में आती है और वहां से सीधे दरवाजे की तरफ चली जाती है। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे घुमाकर खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से भी नहीं खुल रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो हैरान हो गई। तभी उसे दरवाजे के पास दीवार पर थोड़ी सी ऊंचाई पर लॉक सिस्टम नजर आया, जिस पर नंबर लिखे हुए थे। इसका मतलब ये दरवाजा पासवर्ड से खुलता है, लेकिन पासवर्ड क्या है ये तो अरुणिमा को पता ही नहीं था। अब बाहर कैसे जाएगी, सोच सोच कर अरुणिमा परेशान हो गई। लेकिन तभी उसकी नजर उस खिड़की पर पड़ी जहां से वो अंदर आई थी। एक नजर अपने पेट को देखकर अरुणिमा फिर से उस खिड़की को देखने लगी। अंदर से बाहर आना उतना मुश्किल नहीं था जितना बाहर से अंदर आना था। एक तरफ आस्तिक था और दूसरी तरफ वो खुद। ऐसे में अरुणिमा एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गई थी। वो फिर उस खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकती है। कुर्सियां अभी भी वैसे ही रखी हुई थी। वो डाइनिंग टेबल से एक चेयर लेकर खिड़की के पास रखती है और चेयर के सहारे बैठकर खिड़की से दूसरी तरफ आराम से कूद जाती है। इस बीच उसने अपने पेट को थामे रखा था ताकि पेट पर झटका ना लगे।
वो पहले जैसे बाहर तो आ गई थी, लेकिन वहां से रोड तक उसे पैदल ही जाना था, इसलिए वो तेज कदमों से चल रही थी। दोपहर होने वाली थी और गर्मी भी तेज हो गई थी। वो अपने साथ ना तो कोई पानी की बोतल लाई थी और ना कोई अम्ब्रेला लेकर आई थी। इत्तेफाक से उसे सड़क की शुरुआत पर ही एक छोटी गाड़ी नजर आ गई। अरुणिमा गाड़ी को बुक कर लेती है और उसी से मेडिकल स्टोर पहुंच जाती है। फिर उसे वापसी में गाड़ी के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, इसलिए वो उसी गाड़ी से वापस फार्म हाउस की ओर लौट जाती है। मेडिकल स्टोर पर मौजूद आदमी को उसने आस्तिक की हालत बताई और उसने अरुणिमा को उसकी हालत के अनुसार दवाइयाँ दे दीं। भला हो हमारे देश के मेडिकल स्टोर वालों का, जो डॉक्टर से भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। अरुणिमा मेडिसिन लेकर जल्दी से वापस फार्म हाउस की ओर आती है और जैसे वो बाहर गई थी खिड़की से कूदकर, वैसे ही वापस अंदर आ जाती है।